पृष्ठ संख्या 6 अध्याय 2 प्राचीन काल मध्यकाल एवं आधुनिक काल में संगीत का विकास। संगीत शिक्षण की परंपरागत पद्धति का प्रचलन भारत में प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, जिसमें गुरु का शिष्य को शिक्षा प्रदान करना और शिष्य द्वारा शिक्षा ग्रहण करने की परंपरा विद्यमान थी। शिक्षा का आदान प्रदान गुरु के द्वारा संचालित होना ही प्राचीन काल की संगीत शिक्षण की मुख्य विशेषताओं में से एक है। जिस प्रकार वेद, स्मृति, दर्शन, उपनिषद आदि संपूर्ण प्राचीन साहित्य श्लोकों के रूप में कंठस्थ किया जाता था, उसी प्रकार संगीत, जिसे प्रधानतः मौखिक और क्रियात्मक कला माना जाता था, गुरुमुख से ही सीखा जाता था। भारतीय संगीत में गुरु का स्थान सर्वोच्च माना गया है। In the system of Indian culture, Guru has been placed in the highest esteem. भारतीय संगीत में भी गुरु को मान सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। पुस्तकीय ज्ञान के नष्ट होने की चिंता सदैव बनी रहती है, किंतु मौखिक परंपरा से प्राप्त भारतीय ज्ञान और कला समय के आघात प्रतिघातों को सहन करते हुए भी आज भी किसी न किसी रूप में प्राप्य है। नाट्य और संगीत संबंधी ग्रंथ जो भी हमें आज लिखित रूप से उपलब्ध हैं, का समस्त श्रेय गुरु शिष्य परंपरा की मौखिक पद्धति को ही है। इसी पद्धति के द्वारा हम अपने पुरातन साहित्यिक एवं सांगीतिक संपदा को अब तक सुरक्षित रख सके हैं। भारतीय संगीत को अनादि एवं अपौरुषेय माना जाता है, फिर भी इसका एक प्रकार का विशिष्ट आधार वेदों में देखने को मिलता है। वेद चतुष्टीय में से संपूर्ण सामवेद संगीत यानी सामगान को ही समर्पित है। ऋचाओं को गेय रूप देकर संकलित किया गया, उन्हीं को साम संहिता की संज्ञा दी गई। इसी प्रकार साम ऋषि मुनियों की गायन प्रतिभा के प्रयोग की ओर इंगित करता है। इन्होंने बिना किसी से परीक्षण प्रशिक्षण प्राप्त किए स्वयं प्रतिभा के बल ऋग्वेद की ऋचाओं का गायन किया।